आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार ऋषाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व के अपने ब्याज दर को 0.5% से कम करने का निर्णय ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं डालेगा। ये तब आता है जब अगस्त माह के आधिकारिक बेरोजगारी आंकड़े सामने हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से आए इन आंकड़ों में बेरोजगारी दर में कोई बदलाव नहीं पाया गया है और वे 4.2% पर स्थिर है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने महामारी की शुरुआत से पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है, जो अमरीका की धीमी लेकिन सुधरती अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करती है। वहीं प्रधानमंत्री एल्बनीजी का कहना है कि देश में भारी महंगाई अभी भी डेरा डाले हुए है। प्रधानमंत्री जल्द ही क्वाड मीटिंग के लिए अमरीकी दौरे पर रवाना होंगे। दूसरी ओर फेडरल और क्वींसलैंड सरकारें राज्य में सस्ती और सामाजिक रिहाइश व्यवस्थाएं मुहैया कराने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रही हैं। इस संयुक्त कार्यक्रम में वोरी में 490 घर बनाए जाएंगे जो राज्य की वृद्ध जनसंख्या के लिए समर्पित होंगे जो छोटे घरों में रहना चाहती है। इसमें 245 सामाजिक घर, 223 सस्ते घर और 22 अपार्टमेंट विकलांग व्यक्तियों के लिए रखे जाएंगे। ये राज्य में अब तक की सबसे बड़ी रिहायश योजना है जिस पर अगले सप्ताह से काम शुरू किया जाएगा। वहीं एक सेनेट जांच में पाया गया है कि मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज से गुजरने वाली महिलाओं के लिए काम की अधिक लचीली व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समिति ने 25 सुझाव जारी किए हैं जिनमें मेनोपॉज से गुजरने वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम और जीवन की गुणवत्ता को वरीयता देते हुए प्रजनन की छुट्टी और फेयर वर्क एक्ट में बदलाव जैसे सुझाव शामिल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया भर से समिति के पास 300 से अधिक महिलाओं, अधिवेताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए थे। लेबर सेनेटर मैरियल स्मिथ इस समिति की उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि छोटे छोटे बदलाव नियोक्ताओं के स्तर पर भी किए जा सकते हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलियाई विपक्ष का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को उस संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करना चाहिए था जिसमें कहा गया था कि इसराइल को फिलिस्तीनी इलाकों पर अपना कब्जा आने वाले 12 महीनों में छोड़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र में इस गैर बाध्यकारी प्रस्ताव को 142 देशों से समर्थन प्राप्त हुआ जबकि 43 देशों ने मतदान नहीं किया। मतदान न करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। यह प्रस्ताव तब आता है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक सलाहकारी सुनवाई में यह पाया था कि पैलेस्टाइन में इजरायली कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अवैध है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में प्रेषित प्रस्ताव की भाषा का ऑस्ट्रेलिया समर्थन नहीं कर सकता था। और अंत में खबरें भारत से। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को स्वीकार की गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था जिनमें से 47 ने जवाब दिया है। इनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और 15 ने इसका विरोध किया है। अपनी एक देश एक चुनाव योजना पर आगे बढ़ते हुए भारतीय सरकार ने बुधवार को देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव का विरोध किया जबकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया। मार्च में समिति द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप की गई रिपोर्ट के अनुसार आप, कांग्रेस और माकपा ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है। बसपा ने इसका स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया लेकिन देश के बड़े क्षेत्रीय विस्तार और जनसंख्या के संबंध में चिंताओं को उजागर किया जिससे इसका कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ 19 सितंबर 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृषाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।